السلام علیکم ویورز، فرحت اشتیاق کے ناول بدلہ میرے ہمراز کا رنگ کا پارٹ ون، تو میں شروع کرتی ہوں۔ سکرات بکرات قسم کی لڑکیاں مجھے ہمیشہ ہی سے زہر لگتی ہیں، بہت دقیق فلسفیانہ عالمانہ اور عربی طرز گفتگو، اور وہ بھی کسی لڑکی کے منہ سے، میرے لیے بڑی ہی ناقابل برداشت قسم کی چیز ہے۔ اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے مجھے صوبیہ محسن بھی بری لگا کرتی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی، ارسطو کی جانشین یا پھر افلاطون کے خاندان کا کوئی فرد۔ عام لڑکیوں والی تو اس میں کوئی بات تھی ہی نہیں، نہ بننے سنورنے کا شوق، نہ جیولری، نہ میک اپ۔ ہر وقت کتابوں، اخبارات اور جرائد میں وہ دیے پتہ نہیں کون سے الجھے ہوئے مسائل کا حل تلاش کیا کرتی تھی۔ اس کے لیے تفریح کی بہترین جگہ یا تو کوئی لائبریری تھی یا پھر کوئی بک فیئر، کوئی سیمینار، کوئی سائنسی نمائش۔ کتابوں سے اس کا اتنا عشق دیکھ کر مجھے اکثر اپنے بچپن کا ایک شعر یاد آ جایا کرتا تھا، جو میرا جگری دوست فراز اکثر سنایا کرتا تھا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورک ہوگا کفن اپنا۔ پتا نہیں یہ شعر اس نے کہاں سے سنا تھا، مجھے چونکہ شعر و شاعری سے کوئی علاقہ نہیں، اس لیے اس بارے میں قطعی طور پر کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اور صوبیہ کو دیکھ کر مجھے اکثر فراز اور اس کا وہ شعر ضرور یاد آیا کرتے تھے۔ صوبیہ محسن جو میری سگی ماموزاد تھی، اسے سب پیار سے بیا کہا کرتے تھے، اور میں کسی پیار میں تو نہیں، البتہ سب کی تقلید میں اسے بیا ہی کہا کرتا تھا۔ یوں میری اس سے کوئی خاص انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کزنس ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑی بہت بات چیت ہمارے درمیان ہوا کرتی تھی، اس میں بھی دوستی کا رنگ ہرگز شامل نہیں ہوتا تھا۔ بچپن میں مجھے اس کے اس بکراتی پن کا اتنا زیادہ اندازہ نہیں تھا، میرا سارا بچپن قطر میں گزرا تھا۔ میں ان بچوں میں سے ہوں جو منہ میں سونے چاندی کی کٹلری لے کر پیدا ہوتے ہیں، دولت کی ریل پیل تھی، روک ٹوک کرنے والا کوئی تھا نہیں، اسی لیے تھوڑا سا لاپرواہ اور حد درجہ ضدی ہو گیا تھا۔ میں 7 سال کا تھا جب ممی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ممی کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد پاپا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ سلمہ آنٹی جو میری سوتیلی ماں تھی، ان کے ساتھ میری کبھی بھی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی۔ یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھ پر ستیلی ماؤں والے روایتی مظالم کرتی تھی، اور نہ ہی میں اتنا سیدھا اور معصوم تھا کہ خاموشی سے ظلم برداشت کروں۔ مگر پھر بھی پاپا کی شادی کے بعد میں اپنے گھر اور پاپا سے تھوڑا دور سا ہو گیا تھا۔ ننیالی رشتہ داروں میں مجھے اپنے ماموں جان کا گھرانہ بہت پسند تھا۔ اس پسندیدگی کی سب سے بڑی وجہ میری سویٹ سی مامی تھی۔ اسکول کے دنوں میں میں 2-4 مرتبہ ان لوگوں کے ہاں چھٹیاں گزار کر جا چکا تھا، اور ہر بار مامی کا پرشفقت اور ممتا بھرا انداز مجھے دوبارہ ان لوگوں کے گھر آنے کی وجہ فراہم کیا کرتا تھا۔ بیا مامو جان کی اکلوتی بیٹی تھی، تب میں تھوڑے بہت دنوں کے لیے مہمان کی حیثیت سے آیا کرتا تھا، اس لیے محترمہ کا افلاطون پن اتنا زیادہ میرے سامنے کھل کر نہیں آ سکا تھا۔ اس وقت اس کی کبھی کبھار کی عالمانہ گفتگو کو میں اتفاقیہ بات سمجھ کر برداشت کر لیا کرتا تھا، مگر جب سے میں پڑھانے کی وجہ سے کراچی آیا تھا اور مامو جان ہی کے گھر ٹھہرا، تب سے اس کے عالم فاضل پن سے اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ پاپا مجھے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنے کے لیے اسٹیٹس بھیجنا چاہتے تھے، مگر میں نے وہاں کے مقابلے میں پاکستان جا کر پڑھنے کو ترجیح دی تھی۔ شاید میرے اندر کہیں ماں سے محرومی کا احساس بچپن ہی سے پروان چڑھ رہا تھا۔ سلمہ آنٹی کے اجنبی رویوں نے مجھے کبھی بھی ان کو ماں کی حیثیت دینے پر آمادہ نہیں کیا تھا۔ پاپا میرے اس فیصلے پر حیران تھے، مجھے خود بھی اپنے آپ پر تعجب تھا۔ شروع میں مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ میں نے صرف اور صرف مامی کی وجہ سے کراچی جا کر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاپا کو میں نے اطمینان دلا دیا تھا۔ बैचलर्स डिग्री पाकिस्तान से ले लूं, फिर उसके बाद जहां से आप कहेंगे वहीं से मास्टर्स करूंगा। मेरे फैसला कुल अंदाज पर वो मान गए थे, और जो मैं मामू जान के घर आने के लिए बेताब था तो कुछ गलत तो नहीं था। मामू जान के साथ मेरा जाहिर है खूनी रिश्ता था, मगर मामी जिस तरह मुझ पर ममता निछावर करती, जिस तरह मेरा ख्याल रखती, वो सब मुझे बहुत अच्छा और गैर मामूली सा लगा करता था। दौलत से मोहब्बत नहीं खरीद सकते, पापा के पास दौलत के अंबार थे, मगर मेरे लिए मोहब्बत ना थी, या शायद मोहब्बत तो थी, वो उसका इजहार करना जरूरी नहीं समझते थे। मैंने NED यूनिवर्सिटी में दाखला ले लिया था। BA कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में ऑनर्स कर रही थी। वो मुझसे एक साल छोटी थी, मगर जाहिर क्यों करती, गोया मेरी नानी दादी है। तुम्हारे इम्तिहान सर पर है और तुम दोस्तों और आउटिंग्स में मसरूफ हो, कुछ सीरियस हो जाओ पढ़ाई में। रोक टोक तो मैंने कभी किसी की बर्दाश्त नहीं की थी, इस छटांग भर की लड़की को तो मैं लाता किस गिनती में था। शुरू शुरू में मैंने उसके साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार करने की काफी कोशिशें की, मगर जल्द ही मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। उससे दोस्ती का मतलब ये था कि फिर आप घंटों बैठकर इंतहाई खतरनाक और खौफनाक किस्म की गुफ्तगू को बर्दाश्त करें। और जहां तक मेरा सवाल है, तो मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती कि मिर्जा मोहम्मद हादी उमराव जान अदा लिखकर रुस्वा क्यों हुए, और ये के एक साहब थे असद नाम के, जो बचपन में मजनू पर सिंह उठाया करते थे, और बड़े होकर बेचारों का मुंह इस काबिल नहीं रह गया था कि काबा जा सकते। इब्तदाई चंद नशिस्तों के बाद तो मैं खुद ही उसके साथ ज्यादा उठने बैठने से परहेज करने लगा था। उसकी अपनी हम उम्रों की बनिस्बत मामू जान की एज ग्रुप के लोगों से ज्यादा बना करती थी। मामू के तमाम दोस्तों की वो इंतहाई पसंदीदा लड़की थी। अक्सर वो मामू जान के साथ जिम खाना चली जाया करती थी, सिर्फ उनके किसी दोस्त से गुफ्तो शनीद करने के लिए। बहुत दिन हो गए लियाकत अंकल से मुलाकात नहीं हुई। वो मामू जान से मुखातिब होती और वो बगैर कोई एतराज किए साहबजादी को साथ ले जाते, और ये लियाकत अंकल जो उम्र में मामू जान से शायद कुछ बड़े ही होंगे, स्टेट बैंक में किसी ऊंची पोस्ट पर फाइज थे। पिछले दिनों जब वो अपनी बेगम और दोनों साहबजादियों के साथ मामू जान के यहाँ डिनर पर आए थे, तब बिया पूरे वक्त रुपए की कीमत के अदम इस्तेहकाम और माशियत की जबूहाली। यूरो के आने के बाद डॉलर पर क्या असरात मुरतब हुए, यूरोपीय ममालिक की करेंसी एक हो जाने के नतीजे में स्टेट बैंक को क्या फायदे हासिल हुए वगैरह पर काफी सेर हासिल गुफ्तगू करती रही थी। लियाकत अंकल उसकी आलमाना गुफ्तगू सुनकर झूम रहे थे। चलते वक्त उन्होंने मामू जान से कहा था, मोहसिन तुम्हारी बेटी जीनियस है, इतनी जहीन और काबिल, बहुत आगे जाएगी भाई, तुम्हारी बेटी लिखवा लो मुझसे, ये लड़की खूब नाम कमाएगी। कहने के साथ साथ अपनी बेटियों पर मुलामती नजरें भी डाली थी, जो पढ़ाई में तो अच्छी खासी थी, मगर बजाय अपनी काबिलियत बढ़ाने और मुताला करने के सारा वक्त फैशन और कपड़ों के मर्ज में मुबतला रहा करती थी। मामू जान उनके तबसरे पर फख्रिया अंदाज में मुस्कुराए थे। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे लियाकत अंकल की बेटियां नॉर्मल और मामू जान की साहबजादी सनकी महसूस होती थी। मामू जान का हर दोस्त और हर मुलाकाती उसकी काबिलियत के यूं ही गुनगाया करता था, और इन तारीफों पर मोहतरमा खुद को कोई टॉप चीज समझने लगी थी। मामू जान के बराबर वाले मकान में जो प्रोफेसर साहब रहा करते थे, उनके साथ बिया की खास तौर पर बहुत ही ज्यादा दोस्ती थी। कभी पढ़ाई की धुन में मगन बिया साहिबा उनके घर ना जा पाती तो वो फौरन खुद ही तशरीफ ले आया करते थे। प्रोफेसर हजरात तो चलो होते ही ऐसे हैं, मगर ये लड़की उनके साथ घंटों बैठकर अजीब अजीब बातें बड़े ही मजे में किया करती थी। कभी मैं बाहर से आता, प्रोफेसर अंकल और बिया लॉन चेयर्स पर बराजमान नजर आते, आपस में खूब जोरदार बहसें हो रही हैं। कभी कभी इस महफिल में मामू जान भी शरीक होते थे। वो बहसों मुबहसे से ज्यादा बेटी की काबिलियत को प्यार भरी नजरों से देखते रहते थे। अंदर जाते जाते मेरे कानों में कुछ इस किस्म की आवाजें आया करती थी, इकबाल ने तो हुसन को खुदा से शिकवा करते हुए दिखाया कि जहां में क्यों ना मुझे लाजवाल किया, मगर केट्स का इस बारे में इकबाल से जरा मुख्तलिफ नजरिया है। बिया मुकर्राना अंदाज में कहती, प्रोफेसर अंकल उसकी बात की नफी करते, अपनी जवाबी दलील पेश करते और बहस तवील से तवील होती चली जाती, या फिर ये कि हाँ शेक्सपियर के उस सॉन्ग का जवाब नहीं है मोहब्बत में शेक्सपियर ने। और इसी बात पर तो फैज का वो खूबसूरत मिसरा भी याद आता है कि प्रेम कथा का अंत ना कोई, कितनी गहराई है इस मिसरा में। और मैं इस किस्म की बातें सुनकर जल्दी से अंदर मामी के पास भागता था। मामू जान के साथ बैठकर रोजाना बड़ी पाबंदी से बिजनेस न्यूज देखा करती थी मोहतरमा। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर इतनी रवानी से बोलते नहीं सुना था। इंडेक्स कितने पॉइंट्स बढ़ा, हस्सिस के कारोबार में मंदी का रुझान क्यों रहा और सरमाए की मालियत कितने खरब और कितने अरब रुपए पर पहुंची हुई है, वो बड़ी रवानी से अपने वालद मोहतरम की मालूमात में इजाफा करने की कोशिश किया करती थी। पिछले दिनों मामी के रिश्ते के कोई भाई जो अंदरून सिंध कहीं रहते थे और जमींदारी के पेशे से वाबस्ता थे कि कराची आमद हुई थी। उनकी अपनी कई एकड़ काबले काश्त अराजी थी जिस पर वो गन्ने की फसल उगाया करते थे। उन्होंने अपनी बहन के घर कयाम करने ही को तरजीह दी थी और बिया को उनके साथ जरात के मौजू पर तफसीली तबादला ख्याल करता देखकर मैं परेशान हो गया था। ये लड़की वाकई क्रैक है, कोई मौजू छोड़ा भी है इसने या नहीं। वो इतने मजे से उनसे गन्ने की काश्त के लिए पानी की सही मिकदार की फराहमी पर बातचीत करती रही थी। समझे, मार्च अप्रैल से ही गन्ने की फसल के लिए पानी की दुरुस्त मिकदार फराहम हो जानी चाहिए। वो ग्लासेस अपनी नाक पर सेट करती संजीदगी से बोल रही थी और मामी के अजीज भाईजान भांजी साहिबा की बाहबरी के मातरफ हुए जा रहे थे। करंट अफेयर्स की तो खैर बात ही क्या थी, वो सब तो मोहतरमा की फिंगर टिप्स पर रहा करते थे। 11 सितंबर के बाद के वाकयात बेशतर इस्लामी मुवाली की प्रो अमेरिकन पॉलिसी, चाइना रशिया और इंडिया की चुपके चुपके अमेरिका के खिलाफ एक नए ब्लॉक की तश्कील, मुसलमान ममालिक के अवाम का बदतदरीज अमेरिका के खिलाफ बढ़ता हुआ गमो गुस्सा और नफरत, क्यूबा के कैदी, वॉल स्ट्रीट जर्नल का सहाफी और चर्च पर हमला, इन सब के पसे पर्दा असल हकाइक। दिन भर में वो जब तक 4-5 अखबारात और जराइद खंगाल नहीं डालती थी उसे चैन नहीं आता था। जंग और डॉन से शुरू होता ये सिलसिला टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हलीज टाइम्स, न्यूज़वीक, गार्जियन, वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह वगैरह तक दराज हो जाया करता था। मामूजान अपनी जीनियस और इंटेलेक्चुअल साहबजादी पर बहुत फख्र किया करते थे मगर मामी को मैंने कभी उसकी इन बातों पर खुश होते नहीं देखा था। अगरचे उन्होंने कभी इस बारे में कोई बात नहीं की थी मगर मुझे फिर भी अंदाजा था कि वो इन बातों पर चिढ़ती हैं। मुझे यहाँ रहते 3 साल हो गए, थर्ड ईयर का इम्तिहान देकर मैं फाइनल ईयर में आया था। इन गुजरे 3 वर्षों में मेरी मामी के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेटी साहिबा के पास तो गैर मुतल्लिका बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता था, सो मामी अपनी हर बात मुझसे ही शेयर किया करती थी। पापा इस तमाम अरसा में एक बार मुझसे मिलने कराची आए थे, मैं भी 3 मर्तबा दोहा हो आया था। फोन वगैरह पर तो पापा और दोनों भाइयों के साथ राबता रहा ही करता था। बिया का ऑनर्स का आखिरी साल था, उन ही पुरसकून दिनों में मामी ने एक रोज अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर एक इतनी मुश्किल और नामुमकिन ख्वाहिश मुझसे कर दी कि मैं सख्ते की कैफियत में मुंह फाड़े कितनी देर तक उनको तकता रहा। मेरा दिल चाह रहा था मैं मामी से कहूं कि इसके बजाय अब मुझसे ये कहती, अब्बास अगर मुझसे मोहब्बत है तो मेरी खातिर माउंट एवरेस्ट सर करके दिखाओ या अंटार्कटिका के सर तरीन मौसम में तन तनहा 3-4 माह रहकर दिखाओ। मैं ये सब कर गुजरता मगर जो बात उन्होंने मुझसे इल्तजाया अंदाज में आंखों में आंसू भर कर मनवाई थी वो तो दुनिया की नामुमकिन तरीन बात थी। فوری طور پر تو میں مامی کے آنسو اور التجاؤ کے زیر اثر آ گیا تھا اور ہزار کوشش کے باوجود انہیں منع نہیں کر پایا تھا، مگر جب بعد میں جذبات کا طوفان تھم جانے پر غور کیا کہ مامی کی محبت میں میں نے کتنے مشکل کام کی ذمہ داری قبول کر لی ہے تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ان کی وہ سکرات کی نانی ٹائپ بیٹی اس وقت بھی ٹی وی پر نیشنل جیوگرافک چینل پر کینگروز سے متعلق ڈاکیومنٹری دیکھنے میں مگن تھی، جس وقت وہ آہستہ آواز میں مجھ سے التجائیں کر رہی تھی، ایک ہی بیٹی ہے میری، ایسے کون پسند کرے گا اسے، تمہارے مامو جان کو تو کسی بات کا ہوش ہی نہیں ہے، لاڈ پیار میں بیٹی کا ستیاناس کر دیا۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کے ایک ہی اولاد ہوتی ہے مگر وہ ان کی مناسب پرورش کرتے ہیں۔ اس کی ان باتوں پر شروع ہی سے انہوں نے ضرورت سے زیادہ تعریفیں کر کے اسے بالکل ہی ہفتی بنا دیا ہے۔ دیکھو ذرا، اپنی عمر کے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہی نہیں ہے، تم کچھ ایسا نہیں کر سکتے عباس کہ میری بیٹی نارمل ہو جائے، نارمل لڑکیوں کی طرح بہیو کرنے لگے۔ مجھے تو اب اس کی شادی سے متعلق سوچ سوچ کر ہول اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ خاندان میں کسی ایک نے بھی کبھی اشارتاً بھی بیا کے لیے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، اور خاندان والے بھی اپنے رویے پر حق بجانب ہے، ایسی علامہ قسم کی لڑکیاں کس کو پسند آئیں گی؟ بیا ان تمام باتوں سے یکسر لا تعلق کینگروز کا لائف سٹائل، ان کی غذا اور نشو نما کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں مصروف تھی۔ آج کل وہ کتابیں بھی شکاریات ہی کے موضوع پر پڑھ رہی تھی۔ مامی نے اس روز پہلی مرتبہ مجھ سے بیا کے بارے میں تفصیلی بات کی تھی۔ وہ اس کی حرکتوں پر سخت شاکی اور نالا تھیں، اس کے مستقبل کی طرف سے بے حد فکر مند تھیں۔ دراصل پچھلے دنوں ان کی بڑی بہن جو اٹلی میں رہا کرتی تھی، اپنے لائک فائک اور ہینڈسم بیٹے کے لیے خاندان میں سے کسی لڑکی کا انتخاب کرنے پاکستان آئی تھی۔ ان کی آمد کی وجہ سمجھتے ہوئے سارا خاندان ہی ان کے استقبال کے لیے نہایت پرجوش تھا۔ مامی اور ان کی بہن میں بہت محبت تھی، اور اکثر فون وغیرہ پر بات ہونے پر مامی نے ان کے انداز میں یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ بیا میں انٹرسٹڈ ہیں۔ انٹرسٹڈ وہ بیچاری یوں ہو گئی تھی کہ انہوں نے بچپن کے بعد سے بھانجی کو دیکھا ہی نہیں تھا، بس خود ہی خود فرض کر لیا تھا کہ میری بہن کی بیٹی ہے تو ہو بہو اسی جیسی ہوگی۔ مامی نے ان کے آنے سے پہلے بیا کو کافی کچھ سمجھایا تھا، اس نے ان کی نصیحتوں پر تو کیا عمل کرنا تھا، ہاں اپنی زبان و بیا کے کرشمے خوب دکھائے تھے۔ خالہ جان سے پہلے ہی ملاقات میں اس نے مامی کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی۔ میں تو ان تمام ملاقاتوں میں موجود نہیں رہا تھا، مگر مامی نے مجھے تفصیل سے ساری باتیں بتائی تھیں۔ بجائے خالہ جان کو اپنے سکھڑا پہ رکھ رکھا اور ان کے ہونہار فرزند کو اپنی خوبصورتی اور ڈریسنگ سے متاثر کرنے کے، وہ ان سے اٹلی کی تاریخ، وہاں کے لوگ اور وہاں کے طرز زندگی پر گفتگو کرتی رہی تھی۔ خالہ جان بھانجی کے منہ سے اتنی روانگی سے انٹلیکچوئل گفتگو سن کر انکشت بدندا بیٹھی تھی۔ سارے یورپ میں آپ کو اتنے ماہر چور اور جیب قطرے نہیں ملیں گے جتنے اٹلی میں، اور نیپلس تو خیر مافیا کے سلسلے میں مشہور ہے ہی۔ وہ کزن صاحب سے سنجیدگی سے کہتی، پھر کچھ دیر بعد اپنے حالوں سے جو سوئے اتفاق کنسٹرکشن کے بزنس سے وابستہ تھے ان سے وہاں کے آرکیٹیکچر پر باتیں شروع کر دیتی۔ ٹاور آف پیسا کو کون نہیں جانتا، پیسا صرف اسی لیے تو مشہور نہیں کہ وہاں گلیلیو پیدا ہوا تھا، وہاں کا مشہور ٹاور وہ کیوں ٹیڑھا ہو گیا، اس بارے میں تو آج تک انجینئرز اور آرکیٹیکٹس بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پھر روئے سخن خالہ جان کی طرف ہو جاتا۔ اٹیلین پیزا اور پاستا اب پاکستان میں بھی بہت مقبول ہے، زیتون تو خوب وافر پیدا ہوتی ہے اٹلی میں، اور روایتی اٹیلین دعوتیں کتنی مزے کی ہوتی ہیں، مہمانوں کے سامنے ایک دم سے ساری میز نہیں سجا دیتے ہماری طرح، بلکہ ایک ایک کر کے ڈشز کی رونمائی ہوتی ہے۔ اکثر مہمان بیچارے اس لالچ میں کہ کیا پتا اگلی ڈش اس والے ڈش سے زیادہ مزیدار ہو، پہلی کو ذرا سا چکھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ پہلی ڈش عمدہ تھی، بعد والی تو یوں ہی سی تھی۔ کتنا پرتجسس قسم کا ہوتا ہے ان لوگوں کا ڈنر۔ وہ مامی کی تنبیہی نظروں سے بے نیاز مسلسل گل افشانی کرتی رہی۔ आप क्या कभी इटली गई हैं? आखिरकार कजन साहब ने मजबूर होकर पूछ ही लिया था। नहीं, मैं कभी इटली नहीं गई। हाँ, स्पेन गई थी एक मर्तबा मामा और डैडी के साथ। बराबर बराबर तो है दोनों मुल्क। इटालियन और स्पेनिश जुबानों में कुछ खास फर्क भी नहीं है। जिसे स्पेनिश आती हो वो इटालियन बहुत जल्दी सीख सकता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे जापानी और कोरियन जुबानें। वो फसाहत और बलागत के दरिया बहा रही थी। मामी के हदशात 100% सच साबित हुए थे। खाला जान ने बहन से ऊपरी दिल से भी भांजी के लिए बात नहीं की थी, बल्कि अपने भाई की बेटी को पसंद करके झट मंगनी और पट ब्याह का इंतजाम करवाया था। और इसी वाकिया ने मामी को हालात की संगीनी का एहसास दिलाया था। मेरी कोशिशों से अगर उसके लिए कोई रिश्ता आ भी गया तो यह हर बार इसी तरह की हरकतें किया करेगी। वो मेरे सामने बैठी जारों कतार रो रही थी। काश मैं मामी से इतनी मोहब्बत ना करता होता, कम से कम उनको मना तो कर देता। वो लड़की जो मुझसे 2 सेकंड्स के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती थी, उसे मैं सुधारूं? और उसे सुधार लेना क्या इतना आसान काम था? यूं मैं कोई जाहिद खुश्क नहीं। ऐसे में अगर मेरी कजन साहिबा कुछ ढंग की महलूक होती तो मैं मामी के कहने पर इस बिगड़ी हुई लड़की को सुधारने में बड़ी खुशी महसूस करता। मगर वो चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया उसे बर्दाश्त करना तो जो इस शेर लाने के मुतरातिफ है। चलो, किसी एक आदम मजबूर में उसे दिलचस्पी होती तो मैं दिल पर भारी पत्थर रखकर उसे सुनना गवारा कर लेता। मगर यहाँ तो दुनियाए जमाने का कोई मौजू ऐसा नहीं था जिसमें आंसा डॉक्टरियत किए हुए नहीं थी। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा खुशी खुशी मामी के हाथों के पके मजेदार लंच से लुत्फ अंदोज हो रहा था। खाने पीने का मैं शौकीन हूँ और मामी मेरे इस शौक की तस्कीन का अक्सर ही हासा मकूल इंतजाम करती हैं। मजा आ गया मामी, ये छोलों का पुलाव और पालक पनीर। सच, कितने दिनों से मेरा ये दोनों चीजें खाने को दिल चाह रहा था। मामी ने खूबसूरत से क्रिस्टल के प्याले में जेली वगैरह से सजे सजाए कस्टर्ड को मेरे आगे रखा था और कस्टर्ड देखते ही मैंने चावल की डिश उठाते अपने हाथों को फौरन रोक लिया था। मीठा तो मुझे इतना पसंद है कि सिर्फ स्वीट डिश से ही पूरा पेट भर सकता हूँ। वो मेरे लिए अपने हाथों से कस्टर्ड निकालने लगी थी। मामी की यही बातें तो मुझे उनका दीवाना बनाती हैं। इस तरह मेरा ख्याल रखती है कि मैं खुद को किसी सल्तनत का राजा महाराजा समझने लग जाता हूँ। शायद मामी को बेटा ना होने की महरूमी का एहसास था और वो मेरे लाड उठाकर बेटे की कमी पूरा करने ही की कोशिश करती हैं। तुमने कुछ किया अब्बास? कुछ देर बाद मामी ने मुझसे आहिस्तगी से दरियाफ्त किया था। लंच पर अक्सर मैं मामी की वजह से घर आ जाया करता था। मेरे दोस्त घर जल्दी भागने पर मेरा मजाक उड़ाते थे, मगर मैं परवाह नहीं करता था। मेरे शर्मिंदगी के आलम में नफी में सर हला देने पर वो मजीद मायूसी हो गई थी। आप फिक्र मत करें, करता हूँ मैं कुछ। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं करूँगा क्या, मगर फिर भी उनकी उदास शक्ल मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए तसली देने पर मजबूर हो गया था। प्लीज आप कुछ करो अब्बास, मुझे फिक्र के मारे रातों को नींद नहीं आती। आजकल तो अच्छी खासी लड़कियों के रिश्ते मसले बने हुए हैं, ना कपड़ों का होश ना बालों की फिक्र। अपनी दुनिया में मगन कुकिंग के नाम पर शायद वो सिर्फ चाय ही बना सकती है, और वो भी जो शांदे से मिलते जुलते मजे वाली। मैं तो सब कोशिशें करके देख चुकी, मगर उसे तो जैसे किसी बात से सरोकार ही नहीं है। कल मैंने किसी बात पर जलकर कह दिया कि इन हरकतों पर कौन बेहने आएगा तुम्हें, तो झट से जवाब में बोली, ना आए, ये मर्दजात इस काबिल भी नहीं कि इस पर सोचा जाए। औरतों को अपना महकूम बनाकर खुश होते हैं मर्द। मैं तो कभी किसी की हाकमियत बर्दाश्त ना करूं। कहते वक्त ये होश भी नहीं था कि अब्बा जान भी वही तशरीफ फरमा है और उनकी सुनो बजाय उसे कुछ सरजनिश करते या समझाते खामोशी से बैठे मुस्कुराते रहे। वो बहुत शिकिस्ता लहजे में बोल रही थी, अच्छा हासा मजेदार कस्टर्ड मुझे इंतहाई बदजायका और कड़वा महसूस होने लगा था। अच्छा मामी, आपकी खातिर मैं ये करवा घूंट पीने पर आमादा हूँ, मैंने दिल ही दिल में उन्हें मुखातिब किया था। शाम में वो अफलातून की नानी अपने वजन से भी कई गुना वजनी किताब हाथों में लिए लॉन में बैठी थी। क्या हो रहा है बिया, लहजा दोस्ताना करके मैं उसके बराबर वाली कुर्सी कुर्सी पर बैठ गया था। किताब पर से सर उठाकर मुझे घूर कर देखा गया था। ग्लासेस के पीछे से झांकती वो खतरनाक निगाहें मुझे बुरी तरह सहा गई थी। आजकल तुम यूनिवर्सिटी कितना लेट जाने लगे हो, पहला पीरियड तो रोजाना ही मिस हो जाता होगा। ये खेल कूद और तफरीहात काम नहीं आएंगी जिंदगी में। जो लोग अपने आज की कदर नहीं करते, उनका आने वाला कल उनकी कदर नहीं करता। मेरा बस नहीं चल रहा था इस अलामा इब्ने अलामा को ऐसी ऐसी सुनाऊं कि तबीयत साफ हो जाए। वो मुझे नसीहत करके फारिग होने के बाद दोबारा किताब की सिम तवज्जा कर चुकी थी। जहां तक मेरी स्टडीज का सवाल है, तो इस मामले में मैं कभी भी लापरवाह नहीं रहा। मैंने अपने लिए वही मजामीन पसंद किए थे जिनमें दिलचस्पी महसूस होती थी। यही वजह थी कि मुझे अपने दीगर क्लास फेलोज की तरह रट्टे मारने और नोट्स के पीछे भागने की कतन कोई जरूरत ना थी। क्लास में होने वाला लेक्चर ही मेरे लिए काफी हुआ करता था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिक किताबें पढ़ना, प्रोफेशनल जर्नल्स का मुतालिया करना, करंट अफेयर्स से बाखबर रहना, बस मैं इस हद तक खुद को महदूद रखना पसंद किया करता था। इन टॉपिक्स के अलावा स्पोर्ट्स का मौजू भी ऐसा है जिसके बारे में मेरी मालूमात हमेशा मुस्तनद और अप टू डेट होती हैं। स्कूल कॉलेज तक अपने स्कूल की स्नूकर टीम का कैप्टन भी रह चुका हूँ और बॉक्सिंग चैंपियन भी, और अब भी पाबंदी से स्क्वाश और टेबल टेनिस खेलना पसंद करता हूँ। पाबंदी से इसलिए क्योंकि मुझे अपनी फिटनेस बहुत असीस है, मगर ये मेरे मामू जान की अकलौती साहबजादी पता नहीं खुद को मेरी नानी दादी समझने पर क्यों तुली बैठी रहती है। मामी का ख्याल ना होता तो इस फजूल लड़की पर 10 बार लानत भेजकर अपने कमरे में जा चुका होता। क्या पढ़ रही हो, धड़कते दिल के साथ मैंने कुछ देर बाद सवाल पूछा था। या अल्लाह मुझ कमजोर और नादवां पर रहम फरमा। अब की बार चेहरे पर थोड़ी सी रौनक लाते हुए मुझे जवाब से नवाजा गया था। आजकल मैं इब्ने खुलदून को पढ़ रही हूँ। कुछ मुझे भी सुनाओ, मुझे भी हिस्ट्री से काफी दिलचस्पी है। बचपन में कभी कहीं पढ़ा था कि इब्ने खुलदून कोई तारीखदान थे, इसी वजह से इतनी बात बोल पाया था। मेरी बात सुनते ही उसके लबों पर खुशगवार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। 1.5 घंटा तक मैं मुसलसल दिल ही दिल में इस दुआ को दोहराता रहा था। उसने क्या क्या कहा वो सब मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था। मैं तो बस खुद को सब्र की तलकीन करता वहां जमकर बैठा हुआ। आज के तारीखदान दरअसल इब्ने खुलदून ही के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तारीख किस तरह मुरतब करते हैं, इस बारे में लोगों को इब्ने खुलदून ही से इस्तफादा करना पड़ा। खुदा के वास्ते इब्ने खुलदून की पढ़नानी चुप हो जाओ, मेरा दिल दुखाइयां दे रहा था। मामी आपने मुझे किस उलझन में डाल दिया। चला जाता हूं हंसता खेलता मुझे हवादस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। महात्मा गौतम बुद्ध 6वीं सदी कबल मसीह में कपिल वस्तु यानी जो आजकल नेपाल कहलाता है, वहां राजा शदुधन के हां पैदा हुए थे। टॉलस्टॉय ने बहुत कुछ लिखा और बहुत अच्छा लिखा, मगर वॉर एंड पीस का तो जवाब नहीं। सुनो जरा तुम ये पैराग्राफ, हैरान रह जाओगे। हाफिज शिराजी की गजलों में सादगी के साथ साथ रंगीनी भी है और एक अजीब पुरतासुर सी कैफियत है। मसलन ये अशआर डांटे की शायरी अक्सर लोगों को अपील करती है, मगर मुझे कुछ खास पसंद नहीं। जरोन का इंसान पहले क्या था और इंसान के इर्तका के बारे में नजरियात दरअसल मजहब से दूरी का नतीजा है। बहैसियत मुसलमान हमें इस पर सोचने की क्या जरूरत है कि इंसान ने अपनी मौजूदा शक्ल कैसे हासिल की। सिकंदर आजम जिसने दुनिया के बेशुमार मुल्क फतह की है, जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी खुली मुट्ठी ये बता रही थी कि वो दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। किबलाई खान चंगेज खान का पोता था। उसकी सल्तनत में जापान, चीन, बर्मा, मशरकी अफ्रीका और जनूबी हिंद वगैरह शामिल थे। क्या बात थी, ऐसे ही कन्फ्यूशियस में, जो चीन में आज भी लाखों लोग उसके बनाए हुए असूलों को मजहब के तौर पर मानते हैं, मोनालिसा बनाने में लियोनार्डो डावंची को 4 साल लगे थे। सोचो जरा, वो अपने फन से कितना सच्चा इश्क करता था जो 4 साल लगाकर वो शहरा आफाक तस्वीर बनाई। उस जमाने में जब मशरकी ममालिक मगरबी ममालिक के बारे में और मगरबी ममालिक मशरकी ममालिक के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उस कदीम दौर में मार्को पोलो के सफरनामा ने यूरोप वालों को एशियाई ममालिक से मुतलिक दुरुस्त मालूमात फराहम की थी। हम न्यूटन का बहुत मजाक उड़ाते हैं कि अच्छा भला बैठे बैठे उसने सेब को दरख्तों पर से जमीन पर गिरते देखकर ये क्यों सोचा कि सेब जमीन पर ही क्यों गिरा, खामोशी से गिरा हुआ सेब उठाता और खाना शुरू हो जाता। यही तो हम जैसे सतही सोच रखने वालों और न्यूटन में फर्क है। हमने तो मुहावरे तक इसी किस्म के बना लिए हैं कि आम खाओ पेड़ मत गिनो वगैरह। जीनियस लोग ऐसे ही होते हैं, वो बात की तह तक पहुंचना चाहते हैं। आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल इसी किस्म की तवील गुफ्तगु सुनते सुनते मेरा क्या हाल हुआ होगा जब तक उसके पास बैठा रहता, मुसलसल खुद को सब्र की तलकीन करता रहता। मेरी काया पलट पर वो एक दो रोज तो हैरान हुई, फिर अपनी हैरानी पसे पुछ डालकर अपने कब कब के जमा किए हुए इल्म के गोहरे आबदार मेरे ऊपर लुटाने शुरू कर दिए थे। गालिबन उससे सिर्फ और सिर्फ एक सामे की जरूरत थी, कोई भी हो बस जो सुन सकता हो। पता नहीं मेरे दिमाग में भेजा नाम की कोई चीज बची थी या नहीं। बहरहाल ये था कि आजकल मामी मुझे रोजाना बड़ी पाबंदी से निहार मुझ चारों पांचों मगज खिलाया करती थी। रात को सोने से पहले भी दूध में शहद और बादाम डालकर मेरे लिए लाती थी। वो थोड़ी शर्मिंदा नजर आ रही थी, उन्हें पता था उनकी मोहब्बत में मैं किस कड़े इम्तिहान से गुजर रहा हूँ। बिया मैं ब्रिटिश कौंसल जा रहा हूँ, तुम चलोगी? सो व्यूअर्स लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ द फरहत इश्तियाक्स नावल बदला मेरे हमराज का रंग पार्ट 1। सो प्लीज 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 व्यूअर्स लिसनर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। एंड प्लीज 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 व्यूअर्स, इनकरेज मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड अप्रिशिएट माई